अच्छा दादी जानकी जी से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया बाप दादा को और सबकी याद। तो बाबा बोल रहे हैं उनको सबकी याद पहुंच गई, चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसीलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है, जहां भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसीलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जानते, फिर भी वो लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर ये ब्राह्मण आत्मा ही जानती है इस विधि को, अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही, कंबाइन ना अलग हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। उस आधार पर हम कहते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है, इसलिए गाया हुआ है करण करावन हार, तो कंबाइन हो गया ना करण हार और करावन हार। तो आप सबकी स्थिति क्या है, कंबाइंड है ना, करण करावन हार करण हार के साथ है ही, करावन हार अलग नहीं है, इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, अनेक आत्माओं के आगे शैंपल हो सिंपल करने के, ऐसे लगता है ना मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है, ऐसे है ना, अच्छा पार्ट बजाया है ना, जहां भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते, ये ड्रामा की नींद है। अच्छा चक्कर लगाना बहुत अच्छा है, चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंगा का चक्कर है। आप सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है, ड्रामा की भावी खींचती जरूर है, आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे, सोचते भी है जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है, आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा संगठन अच्छा है, जानकी दादी से मुलाकात था तो शुरुआत से हम देख रहे हैं कि बाबा कैसे दादियों को पाठ पढ़ाया, नियम नियम संयम नियम में बांध के रखा, कहीं भी जाते थे घर के बाहर या सेवा में तो बोल के जाना और आने के बाद पूरा समझ कर देना, ये दादी से सीखा। जाते समय भी छुट्टी लेके गया गई होगी दादी ऑस्ट्रेलिया जहां भी सिंगापुर जाना, तो आने के बाद भी पूरा समाचार सुना है कि ये सेवा हुई ऐसे ऐसे याद दिया। तो बाबा ने कहा जो भी जहां भी है जिस प्रकार से बाबा को दिल से याद करते हैं तो सदा साथ हाजिरा हजूर है। इसी पर थोड़े दिन मुरली में था कि बाबा दिल से कहो सर्वशक्तियों की बात थी तो हाजिर हो जाते सेवादारी के रूप में, प्रकृति दासी हो जाती, लेकिन शर्त यह है उस विधि से दिल से बाबा कहेंगे बाबा को याद करेंगे तो हमारी हाजिरा हजूर है। इसी यादगार को उन लोगों ने भक्ति मार्ग में क्या कहा, जिधर देखता हूँ तू ही तू, लेकिन वो कौन तू इस विधि को नहीं जानते फिर भी गाते रहते हैं, लेकिन हम बाबा कहते हैं हम अनुभव के आधार से कह सकते हैं, अनुभव अनुभवी ही जाने इस विधि को और इस अनुभव हाजिरा हजूर को, तभी कोर्ट में भी कहते हैं ना वो हाजिरा हजूर है हाजिर है तो चिल्लाते हैं जोर से कंबाइंड। तो जैसे अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल में जो हमारे डिपार्टमेंट इंचार्ज है जो कहते हैं जो बड़े हमारे उसी अनुसार करते हैं तो उनको उनका संबंध ठीक रहता है, ऐसे बाप दादा हम बच्चों को जो कहते हैं संयम नियम जो भी नियम दिए हैं हमको उस अनुसार चलते हैं तो हमको लगता है कि हम साथ हैं, समीप है, जहां भी है, जितना भी दूर है, कहीं भी है, तो लगता है हम साथ में ही है। साथ में नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जाति धर्म की सेवा के कारण अलग अलग रहना पड़ता है, लेकिन लगता नहीं हमको अलग है, वो हमसे अलग है, क्योंकि लिंक रहती है बुद्धियों से। उन्होंने जो कहा जैसे कहा वो हम कर रहे हैं, करते हैं, तो उनकी दुआ भी मिलती है। और कम्बाइंड का मतलब बाबा जी से बोलते हैं हम अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ों के जो भी छत्र छाया में चलते हैं उनके विश्वास पात्र बन के रहते हैं, तो उसकी अनुभव उसका प्रैक्टिकल है कम्बाइंड स्वरूप की अनुभूति। तो बाबा कह रहे हैं जो करण करावनहार है उसके अनुसार हम करते हैं, तो कम्बाइंड स्थिति इसको कहा जाता है। तो आप सबकी स्थिति ऐसी है ना, कम्बाइंड है ना, करण करावनहार करण हार के साथ है ही, करावनहार अलग हो ही नहीं सकते हैं, इसको कम्बाइंड स्थिति कहा। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, जो भी जहां भी है, स्टूडेंट स्टूडेंट के रूप में, टीचर टीचर के रूप में, सेवादारी सेवादारी के रूप में, तो उस आधार से बाबा कह रहे हैं सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। अनेक आत्माओं के आगे सैंपल है, सिंपल दादिया सब सामने खड़ा रहते हैं मुरली होने के बाद, तो बाप दादा उनको संबोधित कर रहे हैं। अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, और किस बात में सैंपल, सच्चाई सादगी और सफाई, दादी का फेवरेट ये तीन बातें। ऐसे लगता है ना मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है, अच्छा पार्ट बजाया जहां भी है, विशेष पार्टदारी, विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यहाँ मधुबन में भी कहीं भी रहो, जो अच्छे हीरो पार्टदारी होते हैं उनकी कहीं भी जाओ उसी अनुसार उनका पार्ट बजता है तो वैल्यूबल रहते हैं। ये ड्रामा की नूंद है, अच्छा चक्कर लगाना बहुत अच्छा है, चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में वापस आ गए अपने घर मधुबन होम। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह, जहां भी दादियां जाती हैं कितना उमंग उत्साह ब्राह्मणों में, वो पूरा वाइब्रेशन वातावरण वायुमंडल बन जाता है, बाबा में ज्ञान में योग में हो जाता है, सेवा का भी विस्तार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं चक्कर लगाने से सबके अंदर विशेष उमंग उत्साह आता है ना, सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी स्थिति जरूर है, इस सेवा का हिसाब किताब कहो, उन आत्माओं का स्नेह कहो, दादियों को बड़ों को महारथियों को समय प्रति समय इधर उधर चक्कर लगाने जाना पड़ता है, तो वो बाबा कह रहे हैं ड्रामा की भावी स्थिति जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है, मधुबन में रहना चाहते हैं कोई नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सॉरी आप रहना चाहते चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे, सोचते भी है जाना पड़ेगा, सोचते हैं अभी जाने का टाइम, बाबा का भी जाने का होता है तो हम यहाँ रहे, क्योंकि सेवा की भावी है, तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है, सेवा की भावी। और ऊपर क्या बोला बाबा ने, ड्रामा की भावी, अभी क्या कहेंगे दादी, जाना चाहे तो भी नहीं जा सकती, अभी क्या कहेंगे, शरीर की भावी, हिसाब किताब की भावी। बाबा ने एक बार बोला था आप चाहो तो भी नहीं जा पाओगे और रहो तो भी रह नहीं पाओगे, वो समय अलग ये समय अलग। तो सेवा की भावी है, तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है, आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा संगठन अच्छा इतना ही था दादी के साथ, तो दादियों का साथ जानकी दादी के साथ अनुभव बताने के लिए क्या है बस। तो बात ये है उस दिन हम 29 तारीख को गए थे नीचे प्रोग्राम देखने दादी का बर्थडे, तो मैंने देखा साक्षी होकर देख रहे एकदम पीछे अंदर हॉल में, तो पूरा एकदम सभा भरा कल्चरल चल रहा था उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं था, तो 7:45 बजे हम गए दादी शक्ति भवन में, शक्ति भवन में देखा दादी को बाहर मैंने रथ बनाया था बहुत अच्छा, उसमें सजा के दादी को बिठाया बाहर, दादी बोले क्या कर रहे हो सब, दादी को ये सब पसंद नहीं है, तो बोला संसदन में तो ठीक बच्चे तो व्हील चेयर से उठा के ऊपर रख दिया दादी को, तो दादी को रखा और फिर व्हील चेयर नीचे उठा दिया, आराम से बैठ दादी बोलना को दादी इशारा देती है खर्चा नहीं करो ज्यादा उसमें नहीं आओ, लेकिन एक बार बोलती इशारा देती है बाद में एकदम निश्चिंत निर संकल्प होकर बैठती, वो सीन देखने वाला था, एकदम ताज लगाया जैसे गणेश चतुर्थी आती है ना, तो दो चार महीना पहले ही वो मूर्तिकार शिल्पकार जो बनाने वाले होते हैं पहले ही तैयारी करते हैं, मिट्टी बनाना, फिर वो सब रूपरेखा उसकी तैयारी करनी पड़ती है ना, डाई, वो सब मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 2-3 महीना लगता है। अभी अगस्त में गणेश चतुर्थी है तो अभी से बनाना शुरू करते हैं लोग, तब जाके लाखों रुपए के लाखों गणेश जी बना के बेच सकते हैं। तो ऐसे बाप दादा ने हमें देखा है मूर्तियों को, हम बाबा के बच्चों को कैसे बना रहे हैं और वो कैसे प्रख्यात हो। तो वो गणेश चतुर्थी होती है तो दुकान से वो उसको सजा के लाते हैं, जिसमें जितना जैसे जिस एरिया का चंदा जितना जमा होता है उस अनुसार खरीदी करने के लिए गणेश की पसंद करते हैं। तो मैंने देखा वो जाते हैं बाजार ढोल गाजा सजा के खुशी से, वो गणेश जी को पूजा अर्चना करके वहां से लाते हैं उठा के। हाल में लाना था दादी को, तो लाते समय कितना हंसी खुशी से खींचते रहते, खींचते जैसे पूरी में जगन्नाथ पुरी में करते हैं ना, साल में एक बार वो खींचते हैं, तो वैसे वो खींच के लाया हॉल तक। वो सीन देखा मैंने, दादी एकदम बैठ के ऐसे पूरा हाथ में भी माला पहनाया था, तो सबको ऐसे कर रहे थे, जो गणेश जी का मूर्ति मुझे तो पूरा याद आया। तो वो ऐसे ही हुआ था ना उनका हाथ मूर्ति का, दादी ऐसे ऐसे एकदम स्माइल, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा था सीन। चैतन्य जैसे गणेश जी बैठ गए और सबको सब ढोल बाजा बजाते लेके जा रहे हॉल में। हॉल में आई दादी, हॉल में आने के बाद ये सभा देखा, डायमंड हॉल में तो पूरे बड़ी टीचर बहने मना डायमंड हीरे चमक रहे थे एकदम बढ़िया शाम, पूरा कल्चरल का कोई प्रभाव नहीं था। दादी आई बड़ी बहनों के बीच में, कल्चरल क्या उनको तो कितना देखा है, उनको कुछ नहीं आई, तो वो एकदम रूहानी वाइब्रेशन का पावरफुल वायुमंडल था। तो दादी आई हॉल में बैठे, तो जिस प्रकार एक दो निमित मात्र कल्चरल होते रहे, दादी बैठी रही मुस्कुराती रही, उस सीन में ना ताज वगैरह चुन्नी जो पहनते हैं, तो मैंने देखा जैसे जिस स्थान पर बिठाना है गणेश जी को फिक्स होता है, वहां भी पंडाल तैयार करते हैं पहले सिटी में, बहुत बड़ा इसका प्रोग्राम होता है। तो उसी अनुसार दादी का डायमंड हॉल में तैयार था पहले से, मूर्ति को लाए बिठाए, पूजा अर्चना जो करना था कर दिया, पूजा अर्चना वाले चुन्नी चढ़ाना, जो भी सम्मान समारोह में शब्द बोलना है वो करना, खुश होना। फिर दादी को गणेश जी का मूर्ति क्या करती, सिर्फ मुस्कुराते हाथ ऐसा रहता है, दादी को कितना तकलीफ, हाथ उठाने में भी तकलीफ, लेकिन हंसा भी थोड़ा पकड़ा कितना पकड़ेगी। बाद में 3 घंटा मूर्ति की तरफ बैठी रही, 3 घंटा सबको टोली देती रही, मुख में भी डाले फिर हाथ में भी देना, मतलब कितना स्टेमिना, ये बाबा के सिवाय कुछ हो सकता है, इतना पुराना शरीर होती है भी, पुराना समझती नहीं, पुराना बुजुर्ग शब्द सुनना दादी को अच्छा ही नहीं लगता, वो किसी और के लिए बोल रहे ऐसा समझती नहीं। तो ये दादी का मैंने देखा साक्षी होकर बहुत अच्छा लगा वो सीन, ये था। दूसरा दादी की कुछ मुख्य शिक्षाएं है, उसको मैंने सार रूप में किया हुआ है राजू भाई ने। तो भगवान को दादी कहती है, भगवान को चाहिए सच्चे भक्त, हमें भक्ति का फल भगवान मिला है, नशा है कल्प पहले वाला हूँ, आदि सनातन धर्म का हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ये तो इतना खुशी में नाचना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं योग के लिए चाहिए बहुत रिफाइंड बुद्धि, रिफाइंड चीज की बहुत वैल्यू होती है, ये बातें हमने कई बार सुनी होगी, लेकिन दादी के वॉइस में सुनो ना सचमुच ऐसा लगता है हमारी बुद्धि को भी मतलब। हर समय दिन रात अपने आप से बातें करना, भगवान से ही बातें करना और किसी से दिल की बातें न करना, यह है बुद्धि को रिफाइन बनाना। रिफाइन बनना माना और किसी के किसी से दिल की बातें न करना। अगर मन में और किसी से बात करेंगे तो बाबा से बात करने का टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। बाबा से बातें करनी है तो बहुत बहुत साइलेंस चाहिए। जब बुद्धि शांत हो जाती है तो बाबा उसकी सुनता है और उसका रिस्पॉन्ड भी करते। अपने आप से पूछो, जब बाबा से बातें करते हो तो वो जवाब देता है बाबा, क्या वन वे चल रहा है कम्युनिकेशन में। अगर सिर्फ कंप्लेन करेंगे या कोई ना कोई डिमांड करते रहेंगे तो वो जवाब नहीं देता है बाबा, सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। पहले अंतर्मुखी बनो, इसलिए दादी कहती है पहले अंतर्मुखी बनो, देह सहित देह के संबंधों की जो भी बातें हैं वो भूल जाओ, तब वो दिल से बातें सुनता है, तब भगवान की अगर भगवान से जवाब चाहिए तो वो जैसा है वो वैसा बनकर उससे बातें। सारा काम अपने बच्चों से कराता है बाबा, जैसे करण करावन हर बोल, बच्चे सिर्फ बाबा के डायरेक्शन श्रीमद इशारों पर चलते रहे। अभी शिक्षा सावधानी समझानी, डायरेक्शन श्रीमद में क्या फर्क है?
डायरेक्शन
डायरेक्शन श्रीमद शिक्षा सावधानी समझानी। एक ही
परिवार, एक ही फैमिली के हैं, छोटे बड़े,
छोटे बड़े। नियम अनुसार चलने से सब सहज है। राजयोगी वह जिसका योग सहज हो, योग लगाना न पड़े, योगी जीवन हो। योगी जीवन औरों के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण होती है। जिसके साथ योग है वो जो ज्ञान देता है उसे योग सहज लग जाता है। मैं बच्चा हूँ, वो बाबा है, मैं ये मानू तो योग लगेगा, तो खुशी का वर्षा मिल जाएगा। अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के संशय और क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अंदर से ज्ञान को अच्छी तरह समझकर आत्मा परमात्मा ड्रामा के चक्कर को अच्छी तरह से जानकर उसकी गहराई में जाओ। ज्ञान लाइफ में यूज हो। पढ़ाई के समय अटेंशन दिया तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसका पढ़ाई पर ध्यान है, बाबा कैसे पढ़ा रहा है उसे सेल्फ रियलाइज होता है। आत्मा तो कितनी मैली बन गई, पहले वाली मैल उतारी नहीं, अभी कोई देहधारी की याद आई तो और मैल चढ़ जाएगी, पहले वाला ही उतरा नहीं। आत्मा को ज्ञान शांत बना देता है, ये जो ज्ञान है ना शांत बना देता, अशांत होने की आदत ही छूट जाती। ड्रामा का ज्ञान फिर हर्षित बनाता है। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ गया तो कोई भी समस्या ऐसे नहीं लगेगी जैसे बहुत बड़ी बात है। बाबा कहेगा बच्ची नथिंग है, मम्मा कहेगी ड्रामा में था, जो हुआ अच्छा हुआ। हम बच्चे कहेंगे साइड से नहीं पास हो। भगवान ने यज्ञ रचा, बच्चों को सरेंडर कराया, कितनों को सहयोगी सो सहयोगी योगी बनाया। अब कहता है बच्चे समान बनो। समान बनने के लिए कम से कम आठ बातें याद रखो। सरेंडर होना कोई बड़ी बात नहीं है। सरेंडर हो गए, खाया पिया सोया, सेवा नहीं की तो कैसी वाद्य बनेगा। सेवा ऐसी हो जो सबको सुख मिले, किसी की विशेषता पर उसमें तेरा मेरा ऐसी हदें न हो। सेवा में समान बनना है तो हदों से बाहर निकल जाओ, हदों से बाहर निकल आओ। सदा बेहद में रहो, न किसी की विशेषता पर प्रभावित हो जाओ, न कोई की कमियों को नोट करके उसका चिंतन करो। दोनों का प्रभाव परमात्म प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। करावन हार करा रहा है निमित्त बन से, जो सेवा सामने आए वो करते चलो। चित्त में एक बाबा की ही स्मृति रहे, मात पिता के सिवाय दूसरा कोई दिखाई न दे, तथा हमारे सूरत से बाबा की मूरत दिखाई दे। कभी अपने आप से ना उम्मीद न बन जाओ। सफलता के सितारे, चमकते हुए सितारे बनकर बाबा का नाम बाला करो। इस बार बाबा ने क्या कहा, दिल के सितारों। सुख से में भी अपनी विशेषताओं का अहंकार न आ जाए। एक दो को सम्मान देते अपने सम्मान में रह, सदा उड़ती कला में उड़ते चलो। अब चलने का समय नहीं, उड़ने का समय है। नंबर वन में आना है तो पूरी लिस्ट सामने रखो। माला का दाना एक दो को नहीं देखता है। माला का जो दाना होता है वो एक दो को नहीं देखता है। वो माला में कैसे आया, वो कैसे आया माला में, पुरुषार्थ में समानता। सिर्फ एक मेरु दाने को मात पिता को देखा, एक दो के समीप आता गया, लविंग एंड डिटेच, इतना दूर भी नहीं और दूसरा जुड़ा हुआ भी नहीं। माला की विशेषता। आजकल संस्कार मिलन में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए याद की खुशी नहीं रहती है। याद तो करते हैं लेकिन वो गुप्त सूक्ष्म रूप से जो अंदर संस्कार मिलन में जो लविंग डिटैच होना चाहिए वो नहीं होने के कारण हम याद से खुशी जो होना चाहिए वो नहीं हो रही। सबकी विशेषता व गुण अपने अपने हैं, सबकी अपना अपना पार्ट है, अपनी अपनी विशेषता है और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पुरुषार्थ है। सबके एक जैसे तो नहीं होंगे। भावना है कि सब आगे बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसा पुरुषार्थ कम करे ज्यादा। भावना रखनी है हमको सब आगे आगे से आगे बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन ही जाएंगे। अभी तक माला बनी नहीं है, कोई भी माला में आ सकता है। जब आठो शक्तियां साथ देती है तब अष्ट में आते हैं। अष्ट में आने वाले क्या ध्यान रखेंगे, ये हमारी शान नहीं है, जो मतलब हमने जो सदाई पूरे बातें रहने नहीं देते हैं, अष्ट में आने वाले ध्यान रखेंगे कि ये हमारी शान नहीं है, वो सेवा में सदा एक्यूरेट रहेंगे, ऑलराउंडर रहेंगे, योग में अलर्ट रहेंगे, कभी कोई कारण नहीं बता सकता। आज मेरे पेट में दर्द था, ये था, वो था, कोई भी कारण नहीं दे सकते, ये कारण को निवारण करने के निमित्त है। जितना आगे बढ़ेंगे परीक्षाएं बड़े रूप में आएगी। हमारा काम है सबको स्मृति दिलाना, सबके रक्षक बनना। हम तो बाबा की गोदी में बैठे हैं, हमने बाबा के इशारों प्रमाण सब सफल कर लिया, फ्री है, निष्फल कुछ हुआ ही नहीं। कईयों को सेल्वेशन चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, सफल करने वालों को कुछ नहीं चाहिए। सफल करने वालों को सिर्फ अगर आनंदमय स्थिति बनानी हो तो क्या करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए करना ये भी रॉयल्टी नहीं है। जब ऐसे सहज योगी सरल योगी बने तब मिसाल बनेंगे। ऐसे बच्चों को बाबा की प्यार भरी दुआओं की शक्ति मिलती है। सदा ही बाबा ने जो खजाना दिया है उस खजाने से खेलते रहो, जो सामने आए उसे कोई ना कोई रत्न दे दो। रत्नागर के बच्चे हो ना, जो हर बात में बाबा को फॉलो करने वाले हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि हमने तो साकार में बाबा को नहीं देखा। बाबा ड्रामा के राज की स्मृतियां दिलाकर हमें हीरो एक्टर बनाया, मेरे में कोई दाग न रहे, ऐसा सच्चा वैल्यूबल हीरा बन जाओ, पुराना कोई भी इंप्रेशन न रह जाए। अंदर से अपने आप को मार मार कर पुराने संस्कारों को योग अग्नि में संस्कार कर दो।
मार दिया तो
दूसरा ये था, जैसे अभी बाबू ने बोला कि लेटेस्ट वरदान दादी के लिए एक एक लाइन दो दो लाइन का बात करते करते आपस में गुलजार दादी जानकी दादी से बोलते हैं, बॉम्बे में थे तब की बात है, और बीच बीच में भी बीच शक्ति भवन में सुनाते रहते, रोज मिलते हैं। तो दादी कह रही है क्लास में, अगर इस वरदान, ये वरदान जो बाबा हमको कह रहे हैं, दादी बोलती है, इसे अगर आप भी अच्छी तरह से सुनेंगे, ऐसा सुनो जो कभी भूले नहीं, केवल मेरे लिए नहीं, तो फिर आप सिर्फ मेरी महिमा करने के साथ कहेंगे बाबा कमाल है आपके वरदानों की, बाबा के एक एक महावाक्य जैसे कि तो महात्मा हो, दूसरा अशरीरी भव। दादी कहती जी बाबा, देही अभिमानी हो, देह में होते भी अभिमान न आवे तभी कहेंगे देही अभिमानी हो। ऐसी प्रैक्टिस नेचुरली ऐसी हो जैसे बाबा के संग का रंग लगता है, ऐसे लगे। तो प्राण अभि बाप दादा का, बाप दादा द्वारा वरदान एक एक लाइन का ही है, दृढ़ता की चावी द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली हो, दादी को कह रहे। दूसरा, सफलता मुहूर्त का साक्षात्कार करने वाली एकाग्रता और इकोनॉमी के अवतार हो, प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं दादी। तीसरा, फाइनल रिजल्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स लेने वाली एग्जाम्पल रतन हो, इस बार क्या बाबा ने बोला हो, मूर्ति हो, एग्जाम्पल हो, यज्ञ की मूर्ति। चौथा है, सदा एक व्रता एक नामी एकाग्रवृत्ति विशेष आत्मा हो। पांचवा, सदा सब हमारे हम सबके हैं, ये बेहद की विधि विधि में लाने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा। छठा, रियलाइजेशन के कोर्स से फोर्स द्वारा औरों की कमजोरी को समाप्त करने वाली हूं। सातवां, स्नेह की भावना और रहन दिल की कामना से सर्व को सकार देने वाली हूं। आठवां, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल स्थिति का बैलेंस रखने के कारण ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव कराती हो, खुद का तो है ही, दूसरों को भी कराती। ड्रामा का राज है, जब तक बच्चे अपने आप को बाप समान जीवन में प्रत्यक्ष नहीं करते तब तक बाप प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, इसलिए जल्दी से जल्दी हर बच्चा अपने को प्रत्यक्ष करे और तभी बाबा प्रत्यक्ष हो। ये था, और अभी लोगों की हमारे में बहुत अच्छी भावना रहती है सबकी, उन्होंने देखा नागेश भाई के पास बहुत खजाना हो, अब वो जमाना गया, बड़ी दादी जी थे तो हमारे आपस की बहुत वैल्यू थी, क्योंकि सारा ज्ञान खजाना है, प्रोग्राम है, जो भी है, अनुशासन की बातें हैं, यज्ञ के नियम संयम मर्यादाएं, बाबा के डायरेक्शन, पूरा हमारे ऑफिस में फर्स्ट रिलीज होता था दादी का और राजू भाई को, और किसी को नहीं मालूम। कहीं लीकेज हुआ तो मैटर चेंज करते तुरंत, मालूम पड़ता था कहीं कैसे लीकेज होता है पता नहीं। जैसे अभी हम सुनते हैं मिनिस्टर की बातें, कहीं लीकेज होती कैसे होती है उसकी हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ भी जैसे हमने देखा है पहले शुरू शुरू में 93 92 इतना सीक्रेट रखते थे दादिया, क्लोज रहते थे, लेकिन कोई बात लीकेज नहीं होती थी।
आज लीकेज कर रहे हैं
ये तो लेकिन सुने सब सुने भी, कोई नई बात नहीं है। हाँ कुछ नई बातें भी सुनाऊंगा मैं। ये दादी जी पहले है ना दादा वासवानी के नंबर वन फॉलोअर थी, दादी वासवानी पुणे में है ना उनका बड़ा। तो बाबा को मालूम था ये भी बात, बाबा को मालूम था हैदराबाद के मंदिर में दादा आता था, मुझे बाजू में बिठा था। एक क्लास में दादी ने कहा था इतना प्यार करता था दादा मुझे, क्योंकि दादी को जो बुद्धिमता है सब जानते थे पहले लौकी में। क्योंकि तब भी मैंने दिन भर में गावड़े में जा करके कईयों को वेजिटेरियन बनाने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए मतलब जाती थी जगह जगह, इसलिए वासवानी प्यार करता, सेवा की भावना शुरू से ही थी दादी में। फिर जब मैं बाबा की बन गई तो वो थोड़ा नाराज हो, इतना अच्छा मेरा ग्राहक चला गया, तो वो मंडली के खिलाफ हो गया। तो नाराज नहीं हुआ, वही खिलाफ ही हो गया। पर बाबा ने कुछ कहा हाँ, लेकिन उसको लगा इन जैसा जाकर इनकी बन गई मूर्ख है, इन जैसा हुशार इनकी बन गई मूर्ख है हाँ। पर मेरे को लगा मुझे भगवान मिला दादी के। तो ये मतलब शुरू से देखा है दादी ने यज्ञ की हिस्ट्री, कितना बार देखा सुना उसका वर्णन किया। तो दादी को जितनी बार वो करते हैं वो अच्छा लगता है। इस उम्र में हमको हमारे लाइफ को कुछ याद नहीं है, स्टूडेंट लाइफ का दादी की कितनी बातें याद रहती है। आज ही मैं निजी ज्ञान के आधार से पुरुषार्थ करता था, मेहनत से नहीं, और ऊंचा पद पावे ये भी कोई लक्ष्य नहीं रहता था, मेहनत नहीं थी पर समर्पण था। जैसे बाबा ने समर्पण किया उसको फॉलो किया, ये सब पूर्वजों ने एक एक ने ये किया, ये देखा वंडरफुल, एक एक को जानती हूँ दादी कह रही। हर एक का डायरेक्ट बाबा से संबंध में, बाबा का बच्चा हूँ ये पक्का था। ये नादी रत्नों ने जो सेवाएं की वो सेवाएं अभी तक की स्थापना के कार्य में पालना दे रहे, अभी तक भी वो चल रहा है। इन सभी ने जो बाबा से पाया है वो वाइब्रेशन के रूप में पालना का काम कर रही है, अभी तक भी चल रहा है। सारा दिन मुरली पढ़ो सुनो उसी पर चिंतन करो, तो मुरली से जिसका जितना प्यार है उसकी निशानी क्या होगी, उतना वो यज्ञ से भी, यज्ञ शरीर से हड्डी सेवा करने से भी प्यार है। दूसरा दादी कह रहे हैं कि मैंने साकार बाबा को कभी कोई समय स्नान भी कराया है। दादी बाबा को कभी प्लास्टिक या लोहे के बकेट में नहीं स्नान कराते थे, पित्तल के ही, पित्तल के बकेट में ही स्नान कर, मतलब पानी से स्नान। जब साकर बाबा को देखते थे तो सोल कॉन्शियस रहने के सदा ही ऐसा चेहरा अच्छा लगता था। 24 ही घंटा बाबा और मुरली का कोई ना कोई शब्द व चित्रों का ज्ञान बुद्धि में याद रख के चलते थे। उस समय प्राप्त जो ओरली मुरली सुनी वो एज इट इज लिखते थे बाद में, क्योंकि पहले ये सब रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग तो कुछ था नहीं, एक भी अक्षर मिस नहीं होता था, इतनी याद रहती थी। पहले बाबा हर मुरली की बहुत डीप डेफिनेशन सुनाता रहता था सारा दिन भर, बीच बीच में बची गई। बाबा को ये पता था कि मेरा एक स्वभाव था जो कुछ बाबा से सीखू ना वो सुनाओ दूसरों को। तो बाबा हमेशा प्यार करता था, प्यार से कहता था बच्ची जब भी पुणे से मैंने पुणे जाते हो तो बॉम्बे होते जाओ, जो सीखा सुना वो सुना के जाओ, फिर जब भी पुणे से मधुबन आते हो तो बॉम्बे होते जाओ। ऐसे बाबा मैंने उनको बोलना अच्छा लगता था, मैं सच के बिना रह नहीं सकती थी। बाबा ऐसे सुनाता था आत्मा का ज्ञान, आत्मा समझ करके बात करता था तभी मुरली अंदर रह जाती थी, मतलब याद रहता था। एक बार किसी ने कहा रोज मुरली वही होती है, तो बाबा ने ऐसी आंख दिखाई बहुत भयंकर आंख दिखाई बोलती दादी तब से, तो रोज मुरली नहीं होती तभी जिंदा हूं दादी बोलती, रोज की मुरली नहीं होती। हर एक का अपना पार्ट है, मुझे मेरा पार्ट सबसे अच्छा बजाना है। जब बाबा मुख से कुछ बोलता था थोड़ा सारा दिन दिन भर भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न शब्दों रात तक समझाता था वही बात, किसी की बुद्धि इधर उधर जाती थी तो मेरे को इशारा देता था इसको कंपनी दो, हम पुणे सेंटर में सुबह क्लास में पहले सफाई करती थी खुद, क्लास पूरा होने के बाद कभी कोई के लिए नाश्ता लिए बिठाती थी, रोज फिक्स है हम। फिर सदा ही सफाई सेंटर की सब खुद करते थे। तो कंपनी है बाबा की, जो भी ऐसी कंपनी में रहे वो आज दिन तक भी उनको याद है। बाबा ने मेरे मेरे में ये उम्मीदें रखी थी कि जहां ये जहां जाएगी, जिसको कंपनी देगी वो सेंटर अच्छा फलीभूत होगा। तो अभी आप भी अपनी जीवन ऐसी बनाओ जो बाबा ने सिखाया है वो सब हमारे हो, हमारे में हो, कुछ मिस ना हो। दादी जब कराची में आई ज्ञान में 21 साल की थी, बाबा के पास आई तो उन्होंने बताया 12-13 साल कराची में जो रहे कभी दादी एक ही बार कपड़ा लिया, दोबारा कपड़ा नहीं लिया, तो फट जाता, फट तो जाते हैं। दादी की एक कला थी, इधर सुनाती है, मैं समझती हूँ कि एक ही बार कपड़ा लिया होगा, मेरा कपड़ा फटता ही नहीं था, जल्दी फट जाए तो फेंक दो, ऐसा कभी नहीं किया। फट भी गया तो उसको चट्टी लगाकर लगाने में थोड़ा हाथ अच्छा सा होता, कईयों को होता है मोटा मोटा सिलेगा, नया कपड़ा सिलाना तो इजी है लेकिन पुराने को पता न पड़े। तो बाबा ने चट्टी लगाया तो दीदी को पता पड़ा, दीदी ने बाबा को बताया, कपड़ा भी दिखाया, तो बाबा ने देखा रही तो बहुत अच्छा, पता ही नहीं पड़ा, तो मेरा कपड़ा भी जनक को दे दो, तो मेरे कपड़े को भी चट्टी लगाई, बाबा ने कहा। तो बाबा को सादगी अच्छी लगती थी। यज्ञ में कभी भी मैं नहीं समझती हूँ चप्पल भी खरीदी किया हूं, दो पट्टी की चप्पल शुरू से ही पहनते आ रहे हैं। ये एक भगवान की दया दृष्टि मेरे ऊपर दुआओं के रूप में है। हाँ, नहीं स्लीपर नहीं, दो पट्टी वाले बहुत अच्छे हो, दो कर्म अच्छे कर्म करने वाले को अपने आप दुआएं सबकी मिलती है। बाबा इसमें खुश होता है, इसमें खुश होता है, बहुत सारा भक्का वाला पुरुषार्थ, भक्का वाला सेवा उससे नहीं खुश होता है। तो दादी हम सबके प्रति ये स्वप्न सुन, जयंती बहन बोलती है जब 75 में गए कोई सेवा नहीं थी, बैठे रहते थे दोनों, तो आह्वान करते थे, खांसी भी थी दादी को, तो ये सबसे ये दिनीज बहन आई ना दादी सुनाती है, और सेवा कैसे शुरू हुई, एक बार सपना आया दादी को, बाबा को रोहरियान करते करते सो गई, तो सपना आया दादी को, ये ऐसा ही बिल्डिंग है, ये सीढ़ी है, बहुत अच्छा, इधर जाओ। अब वो कहाँ जाओ, लंदन में हर जगह जाती तो रोज ढूंढते तो वो घर मिले ही नहीं। तो एक बार जयंती बहन को उधर से क्या आंटी स्टीव नारायण अंकल जी, तो उधर उन्होंने भेजा, वहां जाके वो जो ट्रांस मैंने, दादी को कभी ट्रांस में जाने का संकल्प नहीं आता था, साक्षात मूर्त बने और बाबा को साक्षात प्रत्यक्ष करे वो उनका लक्ष्य शुरू से ही रहता था। कईयों को होता था कि बाबा को देखते कहते मुझे ट्रांस में भेजो या साक्षात्कार करो, तो ऐसे उनको कईयों को इच्छा होती थी, मुझे नहीं होती थी, दीदी को भी नहीं होता था मैं ट्रांस में जाऊं। तो जो ट्रांस में जाने वाले थे ना उसमें अभिमान बहुत आता, संदेश भी बड़े बड़े लेके आते थे, फिर भी बाबा ने एक बार चलते चलते, ये बाबा ने उन दिनों में गीत बजाया कि उस समय भी डांस करवाया था। बाबा 93 शरीर एज में शरीर छोड़ा, तब दादी पूना में थी, उनको आने नहीं दिया पहले, फिर बाद में आई। गंजी की बात, एक बार ठंडी बहुत थी, लुधियाना का फेमस गंजी होता है स्वेटर, तो गर्म कपड़े आए थे, तो ये बातें आपने सुनी होगी, फिर भी मेरे को जो अच्छा लगा वो सुनाना। तो बहुत अच्छा गर्म था, लच्छू दादी को बुलाया जनक को दे दो, तो दे दिया। जब सेवा में गई, कितना दिन पहले गई, इंडिया में 20 साल सेवा में रहे, यूज किया, फिर लंदन गए, तो लंदन में वो फटा हुआ था, तो अभी उसको अभी तक भी यूज हो रहा है, बाबा ने दी हुई चीजें भावना, फटा हुआ भी नहीं फेंकने का। तो वो अभी वो किस, वहां ठंडी बहुत है ना, दही जमता नहीं, तो कटोरी के पीछे उसको रखती है तो दही बहुत अच्छा जमता है, अभी तक भी यूज हो रहा है वो गंदगी गर्म कितना। बाबा ने पानी पीना भी सिखाया, एक बार खड़े होके पानी पीते ना हम लोग, बाबा ने बोला बच्चे नहीं खड़े होके नहीं पानी पीना, बैठ के पीना चाहिए। और जो हमारे जैसे हमारे जाति बिरादरी के स्टेट के सेंटर के या ऐसे होते हैं तो ज्यादा बात करते हैं, या जैसे कोई चीज अच्छी लगती है तो ज्यादा थोड़ा बहुत खाया ही जाता है ना, सोचते हैं ऐसे। सिंधी है ना, जब सिंधी आई 350 बहने आई एक जन में, इंडिया में भी आई, तो चुर 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 बातें करने की आदत होती है ना, तो बाबा को देखा ये तो वायुमंडल वाइब्रेशन, तो बात अभी आई, उस समय तो ये नहीं था। तो बाबा ने एक ऑर्डिनल से खाना, जो सिंधी में बात करेगा उसका खाना बंद। पुरानी बात न पराई बात, केवल बाबा की बातें हिंदी में ही, तब से हिंदी से हुआ। दादी विदेश सेवा के लिए, हाँ वो मैं वो ट्रांस वाली बात सुन रहा था, जयंती बहन ने बोला दादी के संकल्प तो सिद्ध हो ही रहे, अब स्वप्न भी साकार हो रहे। दादी विदेश में सेवा के लिए कई देशों में गई होगी, पर जहां भी गई वो अपने हाथ से बना के खाई होगी, बीकी के हाथ का भी नहीं खाए, पक्का बीके। वेनिस बहन सबसे पहले बहुत अच्छी बीके बनी धारणा में, तो उन हर एक के घर में जाती थी दादी, कैसे रहते हैं, बिस्तर कहां सोते, सब पूछताछ करती थी और बताती थी ये करना है, ऐसे सोना, ऐसे सोना, किचन में, बेडरूम में, ये दो स्पेशल उनका विजिट रहा था, कहां सोते कौन तो वो जाके वहां करेक्शन करते आना बताना। डेनिस बहन सबसे पहले आई थी, सिगरेट पीती थी वो, तो सिगरेट पी के आई थी, बोला दादी से मैं बोला वो बांस आती है, बोला बांस आती तो फील हो गया दो सॉरी में, तब से उसका सिगरेट छूट गया। तो ऐसे कई सारी बातें, एक बाजू में बुढ़िया थी तो दादी खास रहती हूँ, तो बोला वो मांस मांस खाती थी, वो बोला ये क्या है वो खांसी, बोला रोज देखती थी सुबह सुबह, भाषा कुछ नहीं जानती थी, उसका दर्शन करके खुश हो जाती थी दादी का गैलरी से, लेकिन एक दिन आई नहीं, दिखाई नहीं दे दो तुमने, तो पूछा जयंती मेरे को, बोला वो खांसी आती है, वो बाहर से स्मेल आता है ना उसको फील हो, तो वो मांस छूट गई कई बना खांसी में दादी की सेवा कहने का वो। दूसरा एक और एक सीरे मन गुप्त बात आपने सुना नहीं होगा, बाबा दादा लेखराज की युगल कहेंगे, यशोदा माता जब पांचों दादियों को सम्मुख बना के जो वील किया, सब समर्पण किया, तो ये अभी ये हो गया ना एकदम खाली हो गया, तो हाथ जोड़ के कहा यशोदा माता ने दादियों को जो मुखिया है मेन यज्ञ के, बाबा को कभी भी पानी मतलब दूसरे गिलास में चांदी की गिलास में पीना, यही मेरी नम्र विनती बोल के
यशोदा माता ने बोला, यशोदा माता ने बोला
हाँ उनको दादी, बस इतना रिक्वेस्ट है मेरा। साक्षर बाबा के दिनों में ये ब्रज कोटी की बात है, दादी को बहुत खांसी आती थी, शुरू से ही दादी का तबियत थोड़ा ढीले ढाले रहती थी, तो रात को ब्रज कोटी में कमरा सामने हमने सामने था, रात को 12 बजे भी 2 बजे बाबा उठ के 12 बजे 2 बजे आके बच्चे की तरह हानि मतलब शहद होता है ना वो बाबा मुख में मतलब वो करके जाते थे, देकर खिला करके सुला करके जाते थे बच्चे को ताकि नींद आ ले, इतना बाबा ध्यान रखता था। कोई फिर कोई दिन नहीं था, टाइम नहीं था कि कमरे में निकली, एक बार कमरे से निकल रही थी तो बाबा ने देखा मुझे, तो बाबा ने बुलाया कमरे में, बाबा ने बोला बच्ची ये गीत गा रही हो ना, किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, सॉरी टाइम हो गया, ये भी एक माया है, माइक पकड़ने के लिए पहले डर लगता है, शांति अभी बहुत सारी बातें हैं।
कुछ बोलना है
फिर भी थोड़ा सा बोल सकती है आप आज रहे तो।
ओम शांति। नागेश भाई ने इतना सुंदर सुनाया और सारा जो संकलन किया दादी के बारे में, बाबा ने क्या कहा और दादी के महावाक्य और दादी के अनुभव, ये तो सब जगह भेजना चाहिए। सुशील भाई भेजेंगे, ये सुन रहा था तो बहुत सारी बातें तो सब नई थी मेरे लिए, तो मुझे मतलब एक बात जो याद आई कि अज्ञान काल में बहुत पहले जब मैं इस ज्ञान में भी नहीं था, मैंने एक स्वप्न देखा था और एक कविता लिखी थी, विवी है वो कविता अंग्रेजी में, तो उसमें मैंने ऐसा देखा था कि मैं एक वृद्ध महिला को मतलब देख रहा हूँ एज अ पेशेंट, और सफेद साड़ी पहनी हुई है वो और बहुत ही तेजस्वी एक महिला है, तब एक बार कभी देखा था और उसके ऊपर एक कविता लिखी थी इस तरह से, और मैं भूल गया था उसको, तो शायद वो यही बहुत पहले अभी भी है वो कहीं होगी मतलब। तो दादी के बारे में मुझे तीन बातें हमेशा सबसे ज्यादा आकर्षित जो करती है वो है उसकी स्मरण शक्ति, क्योंकि जो भी आप क्लासेस सुनते हो उसमें आप देखते होंगे दादी कितनी पुरानी पुरानी बातें और ऐसे बताती है जैसे कि वो कल हुई हो, किसने 10 किलो चावल दिया था, किसने कितने किलो क्या दिया था, क्या कुछ दिया, एक एक चीज एक एक प्रसंग इतना उसको याद है, सबसे पहला तो ये। और दूसरा दादी जी का मनन चिंतन, अगर दादी को एक टॉपिक दिया गया तो उस एक टॉपिक पे दादी 10 क्लास कराएगी, एक क्लास ना मिले दूसरे क्लास से, एक ही टॉपिक पे 10 क्लासेस और हर क्लास अलग अलग। और तीसरी बात दादी की अशरीरीपन की अवस्था, क्योंकि कई समय से इतना दर्द में होते हुए भी शरीर से डिटैच होना ये एक बहुत बड़ी कला है। मतलब एक योगी की जो असली परीक्षा होती है वो होती है बीमारी के समय, जब असहनीय वेदनाएं होती है और उस समय अगर कोई डिटैच हो जाए तो ही पता चलता है कि ये लंबे समय का कोई योगी है। तो ये तीन बातें हमेशा ही मुझे आकर्षित
पहले लगता था बोर होता था वही बातें बार बार रोज रोज, लेकिन जब देखा चेकिंग करो मैं चेकिंग देखा और कोई बात हमारे में है ही नहीं, मैं केवल टाइप करो और तो ये तीन लेबर होते हैं ना लेबर, वो सफेद लेबर एक कलर वाले लेबर, वो बात मेरे को लग गई। हम अगर ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करते अनुभव नहीं होता तो हम इस प्रकार के बाबा की और कैसी है, फ्री में खाना मिला, फ्री में रहना मिला, तो तब से मैंने हर एक बात ध्यान से सुनने लगा, दादी की बात जचने लगी और मजा आने लगा, बहुत अच्छा लगा। भावना और भाषना, उनकी दादी का फोकस रहता है, सभा कौन सी बैठी है सामने, फिर बाद में उसको उसी अनुसार वो बातें बताती थी वो, ताकि उनको याद रहे और उनमें काम है। केवल प्रभावित करना, लेक्चर को अलंकारित शब्दों को पेश करना, ये दादी
का। अभी देखो दादी विदेश गई, जब विदेश गई तो उसको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, पर ये कितनी आश्चर्य की बात है कि कोई महिला विदेश जाती है और उसके द्वारा इतनी सेवा होती है और बिना भाषा के ज्ञान के, तो वो कैसे, वो विदेशी लोग दादी के जैसे दीवाने हैं, तो किस चीज से हुआ ये, वो उस आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति की वजह से, ना कि केवल उसके बोल की वजह से, वो तो ट्रांसलेट करके सुनते हैं, पर जब गए और जो सेवाओं का विस्तार हुआ, सूरज भाई ने कभी क्लास में सुनाया था 74 में दादी गए और 4 साल के बाद जब वापस आए तो साड़ी देखकर पता चलता था वो किस हालत में वहां 4 साल रहे होंगे, वो जो साड़ी पहन के गए थे बस वही साड़ी थी आते समय। तो त्याग और तपस्या की जैसे मूर्ति है। और एक दूसरी एक बहुत सुंदर बात दादी ने कभी क्लास में कही थी कि ज्ञान का अज्ञान का सहज परिणाम है भोग। मतलब हम भोग विलास में है, अगर उससे छूटना है तो वो उससे लड़ाई नहीं करो, अज्ञान से लड़ाई करो, क्योंकि अज्ञान का सहज परिणाम है भोग और ज्ञान का सहज परिणाम है त्याग या वैराग। तो वैराग या त्याग अगर लाना है तो उसके लिए ज्ञान को बढ़ाओ, तो ज्ञान अगर है तो सहज त्याग हो जाएगा, वो त्याग करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, कोई चीज से छूटने के लिए मुक्त होने के लिए ज्ञान आ जाए तो सहज त्याग, अज्ञान अगर है तो उसका सहज परिणाम ही भोग है। तो हमको ज्ञानी बनना है, योगी बनना है,
उनके त्याग के आगे
उनके त्याग के आगे पूरे यज्ञ में त्याग मूर्ति है, उसके त्याग के आगे किसी का त्याग कुछ नहीं है, इतना त्याग कूट कूट कर उसमें भरा हुआ है। और सेवा भाव, जो पहले दादी ने नर्स की भी सेवा की, इसके लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर्स और स्टाफ इनसे उसको अधिक प्यार, हमेशा मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम मेरे डॉक्टर हो या मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ इस तरह के वाक्य मैंने कई बार अलग अलग, कभी कहती है कि मेरी वजह से तुम बहुत सीख रहे हो मेरे जैसे पेशेंट तुमको कहीं मिलेगा नहीं जितना तुम मुझसे सुखी हो शायद ही कोई दूसरा पेशेंट, जो मुझे होते रहते अलग 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 सिम्टम्स वो और किसी को नहीं होते, मेरे वजह से तुम पढ़ते भी बहुत हो तो दादी हम सबकी स्नेह है। अच्छा, ओम शांति। तो कल नई मुरली है, निखिलेश भाई फर्स्ट 2 पैराग्राफ और बचा हुआ मंजू बहन, मंजू बहन के बाद में माता जी पूना की माता जी फर्स्ट ग्रुप हाँ 9/12/93 फर्स्ट 2 पैराग्राफ निखिलेश भाई एकाग्रता की शक्ति, उसके बाद में बचा हुआ मंजू बहन पार्ट ग्रुप 1 वो हो गए तीन इधर और उसके बाद में ग्रुप 2 डॉक्टर कुमुद बहन
चौथे दिन।
हाँ अभी टाइम है उसको, या फिर मैं सोच रहा था कुछ और सोच रहा था, मुरली यहाँ पूरी होगी, एक ग्रुप मुरली मंजू बहन और निखिलेश भाई पूरी करेंगे, उसके बाद में सुशील भाई आप कुछ कर सकते हो, ये मुरली बहुत अच्छी है एकाग्रता की बात
करता हूँ कंट्रोल
कंट्रोल नहीं, इस मुरली पर आप एक कविता बनाओ, एकाग्रता पूरे मुरली पर एक कविता और उसका फिर अर्थ सहित उसका तीसरे दिन हमको समझाओ सबको, ठीक है?
समझाओ हमको, समझाओ।
ओम शांति,
ओम शांति।